अब चलते हैं इस बारे पे, एक आपको डिस्कवरी मिलेगी। आज तक शायद कभी आपने इस बारे में से सब्र की इतनी दास्तानें पढ़ी होंगी, तो इस बारे में सब्र की बहुत सारी दास्तानें हैं। सिर्फ इस एक पारे में सब्र के कितने मौके हैं, मसलन कैसे, अब ये पूरे पारे का खुलासा लीजिए। पहले दो रुकुओं में गैर मुस्लिमों के प्रोपेगंडे के मुकाबले में मुसलमानों के सब्र करने का तذکرہ। आज भी लोग मुसलमानों को बुरा भला कहते हैं, किसी हद तक तो ठीक ही कहते हैं, क्योंकि आज हमारे हाथों से डोरियाँ टूटी हुई हैं ना सब्र की, रिएक्शनरी हो गए, अल्लाह के हुक्म नहीं मानते, ना इतात पे सब्र है ना नहीं से रुकने पे सब्र है, तो लोगों ने बातें करनी है, हमें और क्या करेंगे। लेकिन याद रखिए कि मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान था, वो भी सब्र। सब्र, डोंट बी रिएक्शनरी। यानी आप कह लीजिए कि आज के दौर में मुसलमानों को अपनी मौजूदा हालत की इस्लाह की ज़रूरत है और ये सब्र तलब काम है। सब्र कीजिए, सब्र के साथ इस्लाह कीजिए, गैर मुस्लिमों की बातों के जवाब में रिएक्शनरी मत बनिए। फिर आप देखिए, पहली ही आयत में उम्मत वसत की जिम्मेदारियों को निभाना है, व कज़ालिक जअलनाकुम उम्मतन वसत ली तकूनु शुहदा अलन्नास, और उम्मत वसत की जिम्मेदारियाँ अदा नहीं हो सकती सब्र के बगैर। ये पूछिए उन लोगों से जिन्होंने दिन रात अपनी ज़िंदगी इस काम के लिए डिवोट की हुई है, उनकी खुशी गम गर्मी सर्दी ईद और जबरात सब काम इस जिम्मेदारी के एहसास के साथ चलते हैं, ज़ाती ज़िंदगी के तकाज़ों और जज्बात को पीछे डालकर वो अल्लाह के दीन का काम कर रहे होते हैं। फिर इसके बाद आप देखिए किबले की तब्दीली, जो एक बहुत बड़ी तब्दीली थी, इस पर मुसलमानों को सब्र का हुक्म दिया गया। तब्दीली हमेशा बुरी लगती है, इंशाल्लाह एंड पे हम समअप करेंगे इन चीज़ों को। फिर आप देखिए आयत 155 में पाँच किस्म की तकलीफ़ें, वला नब्लुवन्नकुम बिशय्यिन मिनल खौफि वल जूई व नक्स मिनल अमवाली वल अन्फुस, उसमें भी सब्र की बात है कि सब्र तो करना पड़ेगा। फिर आयत 158 में हज़रत हाजरा और इस्माईल अलैहिस्सलाम के सब्र की कहानी है, एक औरत जो अपने बच्चे के पानी के लिए सफ़ा से मरवा और मरवा से सफ़ा घूम रही थी, असल में वो एक बच्चे की प्यास नहीं थी, एक उम्मत की प्यास थी। अरब की ज़मीन उस वक़्त तक नबूवत के लिए तरस रही थी और उस वक़्त ज़रूरत थी कि अब इस बिगड़े हुए माशरे में अल्लाह कोई साहिब खैर लेकर आए, और हज़रत हाजरा के उस चलने फिरने को अल्लाह ने इतना कबूल किया क़यामत तक मर्दों को उसके नक्शे कदम पे चला दिया, इन सफ़ा वल मरवा मिन शायरिल्लाह, कि सफ़ा और मरवा तो अल्लाह के शायर हैं। उम्र आपका पूरा नहीं होता जब तक सफ़ा और मरवा की सही ना करें, हज आपका पूरा नहीं होता। अब आप पर मैं हर एक तो नहीं जाकर सफ़ा मरवा तक जा सकते, हर एक के बस का रोग नहीं है, तो फिर दीन की भाग दौड़ कीजिए। ये जो सुबह उठकर आना और जाना और दो दो चक्कर लगाने और एक एक चीज़ को देखना, अल्लाह चाहेगा तो इसको बीबी हाजरा की तरह कबूल करेगा। एक दुआ किया करें जो बीबी हाजरा से मंसूब है, अल्लाह इसके बाद आपको अपने काम का बना लेगा और आपकी मजबूरियों को भी दूर कर देगा, जो रह जाती हमारे गले का फंदा बनी होती हैं। आप सबको भी सिखा रही हूँ, जो अभी न्यू बॉर्न बेबीज़ बनकर आए ना कोर्स सीखने, आज से एक दुआ शुरू कर दें, ऐ अल्लाह मुझे ज़ाया ना करना, मेरे में अगर खूबी है कोई तो उसको इस्तेमाल करा ले, मेरे में कोई खैर है तो उसको उभार दे, मैं अपनी नेमतों को साथ लेकर दुनिया से ना चली जाऊँ, डाई एम्प्टी, अपने आप को खाली करके भरिए। अल्लाह ने आपको जो कुछ दिया है उस सब को दुनिया वालों को दे कर जाइए, वरना आगे जाकर हिसाब देना पड़ेगा। तो ये सारी सब्र की कहानियाँ आप इस बारे में पढ़ते हैं। फिर आप देखिए आयत 163 से 164 में एक अल्लाह की इबादत पर जमने का सब्र, शिर्क की नफ़ी है। कैसे क़यामत के दिन वो लोग जिनके माबूद जो उनके ख्याल में उनके सेवियर थे, उनकी निजात का ज़रिया थे, वो उनसे जान छुड़ा रहे होंगे और ये कहेंगे काश एक बार अल्लाह हमें दुनिया में आने दे, वलना कर रतन फन तबर रो कमा तबर राउ मन्ना, लेकिन अल्लाह कहते हैं आज सारे रिश्ते टूट गए, सब कट गए, तो शिर्क की नफ़ी की बात है। फिर इसके बाद आयत 166 में उस सब्र की बात है जिन लोगों को करना पड़ेगा जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी दूसरों की आस पे गुजार दी, कल क़यामत के दिन वो आएंगे हमें बचा लेंगे, और ये अपने ज़ोम में उनके नाम के चढ़ावे भी देते रहे, नज़र न्याज भी दी, लेकिन क़यामत के दिन वो तो बेचारे खुद परेशान हैं, तो उस दिन फिर इनको सब्र करना पड़ेगा। तो किसी के ऊपर तवक्कुल करने की बजाय एक रब को राज़ी कर लीजिए। फिर इसके बाद देखिए आयत 168 हलाल और हराम की बात है, तो क्या पता चला हलाल और तैयब खाने पर सब्र करना ही पड़ेगा। गंदी चीज़ कितनी मज़े की क्यों ना लगे, लेकिन अगर इस्लाम ने उसके खाने की इजाज़त नहीं दी तो आप उसको नहीं लेंगे। फिर आयत 170 में बाप दादा के तकलीदी रवैये यानी उनके बातिल तरीके हैं, उनका सब्र है। आज भी देखिए लोगों को वो काम बहुत आसान लगता है जो माँ बाप करते हैं, जो बाप दादा के दौर से चल रहा होता था। तो फरमाया कि अब तुम अगर बाप दादा के नाम पर जो गलत तरीके थे उनको छोड़ रहे हो और तुम्हारी मुखालफत हो रही है और लोग तुम्हें पता नहीं क्या क्या उल्टे सीधे नाम देने लग गए, तो सब्र कर लो, अब ये बातें चुपके से सुन लीजिए। फिर आप देखिए आगे 177 आयते बेरा, लैसल बिर्र अन तुवल्लु वुजूहकुम क़िबलल मशरिकि वल मग़रिब, नेकी की किस्मों की अदायगी सब्र के बगैर मुमकिन है? आप कह लीजिए पूरा पारा जिस चीज़ के गिर्द घूमता है वो सब्र है। आयत 183 में रोज़ा है, रोज़ा सब्र के बगैर रखा जाता है। फिर इसके बाद शौहर और बीवी के ताल्लुक की हदें हैं, पेट और फर्ज के सब्र की बात है। बीवी आपकी है लेकिन आप उसके साथ भी हराम तरीके से ताल्लुक कायम नहीं कर सकते। फिर आयत 188 में रिश्वत से रोकने की बात है, जो माले बातिल है उसका सब्र है। आयत 191 से 193 तक जुल्म और ज्यादती और हराम में ममनू चीज़ों से रुकने पर सब्र है। आप देखिए कि मुझे तो ऐसे लगता है हैंड ब्रेक है सब्र। देखिए दुनिया में भी वही लोग कामयाब होते हैं जो सब्र करते हैं। अगर आप में से कोई मेडिकल के प्रोफेशन तक पहुँच गए तो क्या बग़ैर सब्र करके आप पढ़ गए? कितना पढ़ना पड़ता है एक डॉक्टर को? आप भी कहें हम भी सोते हैं, पीते हैं, खाते हैं, शादियाँ ब्याह दावतें मज़े, तो आप डॉक्टर नहीं बनेंगे। तो लिखिए कि सब्र ना सिर्फ आखरत की कामयाबी की कुंजी है बल्कि ये दुनिया की कामयाबियों की भी कुंजी है। फिर इसी तरह आप देखिए आयत 196 से 197 में हज के दौरान बेहुदा और फोहश बातों, शौहर बीवी के ताल्लुक, लड़ाई झगड़े और नाफरमानी के कामों से जो रुकना पड़ता है इस पर सब्र का बात है। हाँ फला रफसा, रफस होता ही नहीं सब्र के बग़ैर। फिर इस तरह आप देखिए आयत 208 में शैतान की रगबतें, आओ मेरे नक्शे कदम पे चलो, काला तत्तबी खुतुवात शैतान, तो क्या पता चला नफ्स पे काबू रखोगे तो शैतान की टेम्पटेशन से अपने आप को बचाओगे। फिर आयत 212 सिर्फ नंबर लिख लें, बाकी चीज़ें घर जाके आपने आयतों से ढूंढनी है, इंशाल्लाह आपको पूरी बात समझ आएगी। 212 में इस्लाम की वजह से जिन लोगों का मजाक उड़ाया जाता तो उस पर सब्र है। अम हसिब तुम अंतदुलुल जन्ना, क्या तुमने ये गुमान कर लिया कि तुम जन्नत में चले जाओगे और अभी तुम्हारी आजमाइश ना की गई? फिर इसी तरह 214 में अल्लाह ने पैगाम दिया कि जन्नत के रास्ते सब्र से गुजरते हैं। जन्नत के रास्ते पे जाने के लिए वही शेर है ना कि इन्हीं रास्तों पे चल के आ सको तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशां नहीं है। सब्र करने वालों का अल्लाह पर इतना हक है, हदीस है कि क़यामत के दिन कुछ लोग हैं जब आवाज़ लगेगी कि किधर हैं वो लोग जिनका अल्लाह के ज़िम्मे हक है, तो एक बड़ा गिरोह उठेगा और जन्नत की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। फरिश्ते रोकेंगे, अरे भी रुक जाओ, तुम किधर चल दिए, अभी तो हिसाब नहीं हुआ। वो कहेंगे नहीं हमारी आवाज़ लग गई। कहेंगे तुम हो कौन? कहेंगे हम सब्र करते थे। वो पूछेंगे भाई किस चीज़ पे सब्र करके आए हो तुम, कि भाई सब तो खड़े हैं लाइनों में हिसाब के लिए और तुम चल पड़े? वो कहेंगे हम नाफरमानी से रुकने का सब्र करते थे, अल्लाह की फरमाबरदारियों का सब्र करते थे। तो याद रखिए सब्र है कड़वी गोली लेकिन आपकी ज़िंदगी को कामयाबियों से हमकिनार कर देती है। फिर इसी तरह आप देखिए कि आयत 217 में फितनों की बात है। अल्लाह ताला बताते हैं कि जब फितनों का दौर आएगा तो सब्र के बाद कैसे बांधने हैं। आयत 218 में ईमान लाने के बाद हिजरत और जिहाद की जो सूरत हाल पेश आती है इस पे सब्र की बात है, क्योंकि हिजरत हो सकती है सब्र के बग़ैर? कुर्बानी हो सकती है सब्र के बग़ैर? नहीं हो सकती। फिर इसी तरह देखिए आयत 220 में यतीमों की किफालत में जो मुश्किल आता है इस पर सब्र की बात है, क्योंकि जिसका बाप ही सर पे नहीं उसका पैसा खाने से आपको कौन रोक सकता है। फिर आयत 221 में मुशरिक औरतों से निकाह करने की मशरूत इजाज़त है, इस पर नफ्स को बांधने की बात है। नफ्स को बांधना है तो सब्र के बग़ैर नफ्स को नहीं बांध सकते। आयत 221 में हमने देखा कि मुशरिक औरतों से निकाह करने की इजाज़त मशरूत है, इस पर नफ्स को बांधना पड़ता है। बाप को तो इसकी शायद समझ ना आए इतनी, लेकिन वेस्ट में रहने वाला वो नौजवान लड़का जिसको अपने साथ काम करने वाली गैर मुस्लिमा बड़ा अट्रैक्ट करती है लेकिन इस्लाम ने पाबंदी लगा दी है, तो वो नफ्स पे काबू पाएगा, तो ये भी सब्र के साथ ही होगा। फिर इसी तरह आयत 222 में पीरियड्स की बात है। हैज़ या सलूना का निल महीस, तो हैज़ के दिनों में बीवियों से दूर रहने की तकलीफ़ पे शौहर को भी सब्र है। औरत के लिए तो वैसे ही वो तकलीफ़ और बीमारी के दिन होते हैं, उसको सब्र करना पड़ता है। फिर इसी तरह आयत 224 से 225 में बहुत ज़्यादा कस्में खाने की जिसको आदत है का सब्र करो, अपनी इस आदत पे काबू पाओ और जब मुश्किल आएगी उस पे सब्र करो, यानी बात पे बात कस्में ना खाओ। फिर आए 226 में, बीवी से नाराज़ हो गया शौहर, ईला करना चाहा, कहा ठीक है 4 माह के सब्र की बात है, बस 4 माह के बाद चाहो तो फिर इसको छोड़ो, तो या फिर इसके साथ बीवी बना के रखो, ये ना कि ना वो बीवी और ना वो बेवा हो, बीच में लटकती हुई मत छोड़ो। यानी शौहर बीवी के ताल्लुकात में सब्र की कितनी बात कर दी। और फिर आए 227 के बाद अगली आयात में इद्दत और तलाक की जो बातें हैं, तलाक के बाद इद्दत के 3 माह सब्र के साथ गुजारने की बात है, ये भी सब्र है। फिर आए 229 में तलाक के मामले में एक दूसरे पर ज़्यादती करने से रोकने पर सब्र है कि अब हो गया मामला ख़त्म, झगड़े हो गए, घर ख़त्म हो गया, कोई बात नहीं, अब एक दूसरे को बुरा भला ना करो, तुमने कोई तीर नहीं मार लेना लोगों को ये बता करके सारा कसूर ही दूसरे का था, तुम्हारा तो कोई कसूर ही नहीं है, सब्र करो। यदि इस ज़ुबान को सीना पड़ेगा और इस पर सब्र करना पड़ेगा। फिर आए 233 में 2 साल तक बच्चे को दूध पिलाने की तकलीफ़ है, इस पर सब्र करना है माँ को, मुश्किल है आसान है जो भी है आपको अपने बच्चे को दूध तो पिलाना पड़ेगा। फिर आयत 234 में बेवा की 4 माह 10 दिन की इद्दत का जिक्र है, सब्र के बगैर ये दिन गुजर सकते हैं? नहीं गुजर सकते, इसके ऊपर सब्र करना है। फिर आयत 235 में ऐसी इद्दत वाली औरत को जिसका दिल चाह रहा है कि निकाह का पैगाम दे दिया जाए, लेकिन कहा नहीं अभी सब्र करो, इद्दत के दौरान कोई मर्द किसी औरत को निकाह का पैगाम या निकाह करवाने का सोच भी नहीं सकता, इस पे सब्र करना पड़ेगा, तुम इससे पहले कोई काम कर नहीं सकते जब तक मुद्दत पूरी ना हो। फिर आप देखिए पारे के एंड तक हम पहुंच चुके हैं, आयत 243 में बनी इसराइल के 2 वाक्यात हैं, मैदान जंग में जो सब्र के मौाक़े आते हैं उसकी बात है, पानी सामने मौजूद है, चुल्लू भर से ज़्यादा नहीं पी सकते, क्या ये सब्र के बगैर मुमकिन है? जैसे आपके मेरे सामने दुनिया खुली पड़ी है, चुल्लू लेना है बस, कूते ला या मौत, जिससे बस ज़िंदगी के दिन पूरे हो जाएं, सब्र के बगैर ज़िंदगी को आसान और सादा नहीं रखा जा सकता। फिर आए 247 में ऐसे हुक्मरान पर सब्र की बात है जो हुक्मरानी को दिल से ना मानता हो, यानी कुछ लोग हैं वो नहीं मानते किसी हुक्मरान को, कहा नहीं तुम्हें उसको मानना पड़ेगा। और आए 250 में एक दुआ है, रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रन, ऐ रब हम पर सब्र का फैज़ान कर दे और हमारे कदमों को जमा दे और काफ़रों के मुकाबले में हमें मदद दे दे। और आखिरी आयत 252 पारे की, रिसालत की जिम्मेदारियों पर सब्र की तलकीन। कितने लोगों ने आज तक कभी भी दूसरा पारा पढ़ा हो और उनको कम से कम ये 30 से 35 सब्र के नुक्ते मिले हैं, वो हाथ खड़ा करें। हमने तो कभी ऐसे कुरान को सोचा भी नहीं। फिर कुरान पढ़ने के बाद सब्र आए कैसे? हम तो कई कई कुरान पढ़ चुके होते हैं, सब्र नहीं बल्कि और बेसब्रे हो जाते हैं। तो क्या पता चला कि इस पारे में आपको मुझे सब्र सिखाया जाएगा, आपने मैंने अपनी ज़िंदगी को सब्र से लेना है। चंद बातें सब्र के बारे में नोट कीजिएगा। एक बड़ा खूबसूरत जुमला जो मैं अपने लिए रखती हूँ, आज आपकी नज़र करती हूँ, सब्र सब्र के साथ आता है। लिखिए, सब्र सब्र के साथ आता है। कुछ लोग सब्र मांगने में भी बेसब्रे हो जाते हैं, गॉड गिव मी पेशेंस बट सून, अल्लाह कहता अभी नहीं मिलेगा। अल्लाह ने सब्र को उस शख्स सवार की मानिंद बनाया है जो कभी लड़खड़ा कर नहीं गिरता, यानी घोड़े पे बैठा वो शख्स जो कभी ना लड़खड़ाए, ये वो शख्स है जो सब्र करता है। और सब्र की मिसाल उस नंगी तलवार की तरह है जो कभी कुंद नहीं पड़ती, सब्र उस लश्कर की मानिंद है जिसको कभी शिकस्त नहीं होती, और सब्र उस मजबूत क़िले की मानिंद है जिस पे हमला करने वाला कभी गलबा नहीं पा सकता, और सब्र उस सवारी की मानिंद है जो अपने शख्स सवार को लेकर कभी रास्ता नहीं भटकती। सारी बातों को जमा कर लें, सब्र करने वाला कभी नुकसान नहीं पाएगा। सब्र और तहम्मुल, यानी सब्र और तहम्मुल कह लीजिए, और अल्लाह की नुसरत, दो जुड़वा भाई हैं। लिखिए, सब्र, उसके साथ 2-4 लफ्ज़ जो मर्ज़ी बोल लीजिए, सब्र है, तहम्मुल है, ठहराव है, और प्लस अल्लाह की मदद, ये 2 जुड़वा भाई हैं। इन्नल्लाह मा साबिरीन, बिलाशुबा अल्लाह की नुसरत और मदद सब्र करने वाले के साथ है। फिर एक और जुमला लिखिए सब्र के मामले में, कि सब्र का मुकाम जिस्म में सर की मानिंद है, सर, हेड। सब्र ही दुनिया और आखरत में निजात और फलाह और कामयाबी और कामरानी की कुंजी है। صبر اللہ کے راستے میں اللہ کے نام کو بلند کرنے کی خاطر جان کا نذرانہ پیش کرنے والوں کے لیے ایک تحفہ ہے۔ جب دنیا میں آپ نکلیں اللہ کا نام لے کر دین کی خدمت کے نام پہ، لیکن نہ تو مدد ہے، نہ کوئی اچھا رسپانس ہے، نہ اچھے ساتھی ہیں، ایسے وقت میں بندہ لوگوں کی بھی باتیں سنتا ہے اور لوگ کہتے ہیں کیا کریں کچھ نہیں۔ ایسے میں ایک سچے دائی دین کو صرف اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، میں اللہ کے راستے میں نکلا ہوں، اللہ میری مدد کرے گا۔ اور کہتے ہیں کہ صبر عالم دین کے لیے اس وقت زادہ راہ کی حیثیت رکھتا ہے جب وہ علم دین کے حصول کے لیے راستے ناپتا ہے، گرمیوں میں پیدل آتا ہے، رستوں میں جاتا ہے اور اپنے بچوں کو اور غربت کے مارے لوگوں کو چھوڑ دیتا ہے اور آ کر اللہ کے دین کا کام کرتا ہے۔ کیا سمجھ آئی؟ جب تک دین حاصل کرنے کے لیے راستے نہ ناپے جائیں، گھر سے نہ نکلا جائے، کچھ مال خرچ نہ کیا جائے، بچوں کو کسی نہ کسی جگہ ایڈجسٹ نہ کیا جائے، تب تک دین نہیں ملتا۔ اور نوجوان عورت مرد سب کے لیے یہ ایک لازم بہترین زادہ راہ ہے۔ جو بندہ صبر کر لیتا ہے نا، وہ اللہ کی دامن رحمت میں آ جاتا ہے، اس کی زندگی کا ایک نیا شکر ہوتا ہے۔ اب سوال ہے کہ یہ صبر کیا ہے، اس کی قسمیں کیا ہیں، اس کے ثمرات کیا ہیں، ہم اس صبر تک کہاں پہنچے، اور سب سے بڑی بات ہے کہ اس صبر کے راستے کی رکاوٹیں کیا ہیں، اس کی آفتیں کیا ہیں۔ آپ اپنے اوپر لے کر سوچئے، آپ جس جگہ پیدا کی گئیں، آپ سب کا ایک سٹیٹس ہے، آپ میں کچھ ان میرڈ بچیاں ہیں، کچھ میرڈ سسٹرز ہیں، کچھ فیملی میں رہتی ہیں، کچھ اکیلے میں رہتے ہیں، کچھ کے بچے ہیں، ان کے مسائل ہیں، کچھ کے نہیں۔ آپ اپنا صبر ڈھونڈیں، جب تک آپ اپنے آپ کو اللہ کے رستوں میں نہیں جمائیں گے نا، بات نہیں بنے گی۔ اور اگر صبر کی تعریف پوچھنی ہے، حبس نفس، نفس کو روکنا، قید و بند، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، سورۃ کہف 5:28 میں آتا ہے، روک رکھو اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جو صبح و شام رب کو پکارتے ہیں اور اس کی رضا چاہتے ہیں، اس کا چہرہ چاہتے ہیں۔ تو صبر میں روکنا آتا ہے۔ بنی اسرائیل میں بھی ایک اللہ نے صبر کا موقع رکھا تھا، لیکن انہوں نے کیا کہا، لَن نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، 61 سورہ بقرہ، کہتے تھے ہم سے ایک کھانے پہ صبر نہیں ہوتا، یعنی اللہ نے جو کہا تھا من سلوا کھاؤ، اس پہ نہیں صبر کیا جاتا۔ عرب لوگ کہا کرتے ہیں قُتِلَ فُلَانٌ صَبْرًا، یعنی اسے قتل کرنے کی غرض سے قید کر لیا گیا اور اب اس کو یہ مشقت تو برداشت کرنی پڑے گی۔ پھر آپ دیکھیے کہ صبر کے کچھ مختلف اینگل ہیں، صرف انٹرسٹ کے لیے سن لیجئے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ کیا کچھ ہے۔ مطلب دیکھیے، صبر یصبر صبرن، ایک اس کی ٹونجی ہے۔ اس میں اردو کا لفظ کیا ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اردو کے اعتبار سے صبر کے، جزا و فضا کرنا، سنا وہ لفظ، جزا و فضا، اس کی ضد ہے۔ ہر وقت شکوے، ہر وقت گلے، پریشانی، یہ ہے وہ ہے۔ عرب لوگ کہتے ہیں رجل صابر، صبر والا شخص، صابرہ بڑا پیارا نام ہے، رکھیے اپنی بچیوں کا، صبیر رکھیے بیٹے کا نام، صبور رکھ لیجئے بیٹے کا نام، صبیرہ رکھ لیجئے۔ صابرہ تو کسی حد تک ہمارے کلچر میں ہے بھی نا نام، ٹھیک ہے۔ کبھی کبھی اس میں تا لگ جاتی ہے، تصبر، تصبر کہہ لیجئے، اس میں اور مشقتیں ہوتی ہیں۔ تو بیسیکلی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں دکھاوے کی خاطر بلا وجہ قد صبر کرنا دکھا رہے ہوتے ہیں، ہائے کیا بتاؤں، میرے اوپر کیا مشکلیں ہیں، یہ نہیں صحیح، یہ جھوٹا صبر ہوتا ہے۔ جیسے بچے کو چوٹ تھوڑی لگتی ہے، منہ زیادہ بناتا ہے، ایسے بھاں بھاں کر کے رونا، ہاں، تو یہ فرق ہوتا ہے۔ صبر کے 5 مختلف درجے لکھ لیں، ابھی لکھتے جائیے۔ ایک پہلا درجہ ہوتا ہے صابر ہونا، جو نہیں لکھ سکیں گے بعد میں لکھ لیجئے گا، ابھی بس سنتے جائیے۔ دوسرا ہے مستبر، تیسرا ہے متصبر، چلیں اردو تو اچھی ہو جائے گی نا یہاں رہ کر اور کچھ نہ ہو تو۔ چوتھا درجہ ہوتا ہے صبور کا، اور پانچواں درجہ ہوتا ہے وسبار کا۔ صابر تو صبر کے سلسلے میں عام شخص ہے، یعنی پہلا درجہ ہے صابر، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد مستبر ہے، یہ کون ہوتا ہے جو جم جائے، تھوڑا سا صبر نہیں بلکہ صبر پر جمع رہے اور مشکل میں دو چار شخص، ٹھیک ہے۔ متصبر اچھا لفظ نہیں ہے، یہ بناوٹی صبر ہوتا ہے، نفس کو دکھاوے کی غرض بناوٹی صبر پہ آمادہ کرنے والے کو متصبر کہتے ہیں۔ صبور سے مراد صبر عظیم ہے، اس کا مظاہرہ کرنا، ایسا صبر کہ دوسرے اس کی مثال دینے لگے، اللہ اکبر، کہ لوگ کہ واہ کوئی صبر دیکھے تو اس کا دیکھے۔ और दूसरा इसका जो मद्दे मुकाबले है ना ओपोनेंट, वो उस मुकाबले की ताक ही ना ला सके, यानी बीवी शोहर के मुकाबले में ऐसी सब्र करने वाली हो जाए कि शोहर ऐसा सब्र कर ही नहीं सकता, ये मुराद है। और सब्बार से मुराद है हद से ज़्यादा सब्र व तहम्मुल से काम लेने वाला। अब ये तो आपको थोड़ी डिक्शनरी के मैंने लफ्ज़ सिखाए हैं ना, लेकिन असल देखा जाए इस्लामिक टर्मिनोलॉजी में इस्तलाही तौर पे सब्र क्या है? मरगूब, नफ्स की जिन चीज़ों पे टेम्पटेशन है, मरगूबात और महबूबात नफ्स चीज़ों से ख़ुद को रोकना। ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बु शहवाति मिनन्निसा वल्बनीन वल्क़नातीरिल्मुक़न्तरा, अगले ही पारे में हम पढ़ेंगे तीसरे पारे में कि अल्लाह ने नफ्स में बहुत सारी चीज़ों की खूबसूरती रखी हुई है, कशिश होती है, लेकिन अल्लाह ने कहा कि तुम इन चीज़ों की तरफ मत पढ़ो। ठीक है, तो कह लीजिए टेम्पटेशन से रोकना, ख्वाहिशात से रोकना, हर वक्त अपने नफ्स के ही लाड़ नखरे देखते रहना, ये सब्र है। हर चीज़ नफ्स को उससे बचाना जो इंसान के इंजाम को गलत कर दे, ये भी सब्र है। आप हर चीज़ खाते रहिए, मोटे हो जाएंगे। आप हर काम कीजिए जो आपका दिल करता है, बदनाम हो जाएंगे, है ना। तो कह लीजिए कि कंट्रोल ज़िंदगी के अंदर रहना, ये सब्र है। इसीलिए आप देखिए मुसीबत और इब्तला का जो मुकाबला करता है शख्स, उसको साबिर कहा जाता है, जजा फजा नहीं करना। इसी तरह एक और तारीफ लिखिए, माह रमज़ान शहरुस सब्र कहा जाता है, क्योंकि इसमें खाने पीने और शहवत से सब्र किया जाता है। अब सब्र और तहम्मुल के कुछ मर्तबे और दर्जात हैं, समझ लीजिए। सब्र का कोई एक मर्तबा ऐसा जिस पर इक्तफा किया जाए नहीं है। ज़िंदगी की मुख्तलिफ हालतों में आपको, आज आप माँ बाप के घर में है ना, आपका सब्र और है, स्कूल जा रहे हैं, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, ये सब्र और है, आपको लगता है ये इससे मुश्किल कोई चीज़ नहीं। हम जब पहली दूसरी क्लास में थे लगता था इससे मुश्किल क्लास ही कोई नहीं, और जब चौथी पाँचवीं में गए तो लगा दूसरी तीसरी आसान थी। हर ज़िंदगी का दौर आप सबके लिए, जिनकी ज़िंदगी के अभी दिन शुरू हुए हैं, यकीन कीजिए सब्र रंग बदल बदल के आएगा, गिरगिट की तरह रंग बदल के आपको सब्र करना पड़ेगा। क्यों लड़कियां पहले रोती हैं शादी हो जाए और हो जाए तो फिर मैके आने के लिए रोती हैं? भाई इसी घर से गई हैं आप, कितने 20-25 साल रह के गई हैं, दुआएं मांग मांग के आपको भेजा, आप टिक के रही है ससुराल में, वहाँ बैठ के माँ बाप को याद कर रही होती हैं। तो ज़िंदगी के मुख्तलिफ हालात में सब्र करना पड़ता है। सब्र की जो सबसे बड़ी चीज़ जो अल्लाह आपसे मुझसे चाहता है ना, वो है नाफरमानियों से परहेज़। आज अगर माँ बाप के घर में तो माँ बाप की नाफरमानी से रुकेंगे, कल शौहर के घर में जाएंगे तो उसकी नाफरमानी से, और ओवरऑल हर गुनाह की चीज़ से रोकना। फिर इसी तरह ज़िंदगी में कुछ मुसीबतें और तकलीफ़ें आती हैं, हर दौर में आती हैं। बच्चे का इम्तिहान देना सब्र नहीं है, बेचारा वो पेंसिल का सिक्का टूट गया रोने लग गया, सब्र कीजिए। रबड़ नहीं मिल रहा, शॉर्पनर नहीं मिल रहा, बेटा सब्र कीजिए। लुकमान ने अपने बेटे को जो नसीहतें की थी उसमें सब्र की बात थी, वस बिर अला मा कलफ़ सतला मा यकूलून, लोगों की बातों पे सब्र करना पड़ता है। फिर इसी तरह सब्र एक है कि हलाल कामों के करने में नफ्स को तैयार रखें, वज़ू करें, सब्र करेंगे तो न होगा, नमाज अभी पढ़ेंगे, उठ के पढ़नी पड़ेगी, है ना। तो सब्र के हराम से रुकना और हलाल काम को करना, सबसे बड़ा सब्र मासियत से रुकना है। अगर आप अपने नफ्स को गुनाह से नहीं रोक पाए अभी तक कितने साल कुरान पढ़ने पढ़ाने के बाद, तो इस साल कोशिश कीजिए। इब्ने क़य्यिम रहमतुल्लाह कहते हैं अपने उस्ताद के बारे में, जिनका नाम इब्ने तैमिया था, कहते हैं कि मैंने इब्ने तैमिया को ये बात कहते हुए सुना है, आपके अल्फाज क्या हैं कि यूसुफ का अज़ीज़े मिस्र की बीवी की ख्वाहिश पर उसकी बात ना मानना, ये सब्र और नफ्स कुशी भाइयों के कुएं में फेंक देने से ज़्यादा मुश्किल थी। कितने लोग मानते हैं, वो तो भाइयों ने फेंक दिया कुएं में, वो तो गैर इख्तियारी थे, क्या करते, पकड़ के कुएं में फेंक दिया, अब एक छोटा सा बच्चा क्या करता। लेकिन एक खूबसूरत ओहदेदार बीवी किसी की बुलाए और यूसुफ का वहाँ रुक जाना और अंधे कुएं से निकलकर एक खूबसूरत औरत के पास आ जाना, इस पे रोकना, ये सब्र का सबसे आला दर्जा था, इसमें इख्तियार था। तो लिखिए, एक होता इख्तियारी सब्र और एक होता गैर इख्तियारी सब्र, जिसको आप इंग्लिश में कह सकते हैं फोर्स्ड पेशेंस, और एक होता है कि रिलैक्स्ड। आप मजबूर हो गए, आप और क्या करेंगे सब्र के अलावा। जब तक आप और मैं खुद अपनी ट्रेनिंग के लिए खुद को पेश नहीं करेंगे, कोई भी हमारी ट्रेनिंग नहीं कर सकता। किसी को पानी की बाल्टी में पूरा डिप करके भी निकाल लें ना, लेकिन अगर उसमें जज्ब की कैफियत ना हो, मसलन प्लास्टिक का कपड़ा या प्लास्टिक का टुकड़ा, तो वो बिल्कुल सूखा होगा, उस वक्त लगेगा गीला हो गया, लेकिन उसके बाद क्या होगा, जब आप चंद मिनट नहीं गुजरेंगे देखेंगे तो वो खुश्क होगा। और थोड़े से पानी में आप कॉटन के पीस को जोड़ के देखिए, ऐसे बाद में भी गीला होगा। आपने मैंने अपनी इसलाह खुद करनी है, इसलाह आपके मेरे हाथ में है। और इस वक्त हम सब्र सीख रहे हैं, तो बात कर रहे थे कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का सब्र जो उन्होंने अज़ीज़े मिस्र की बीवी के सामने किया, वो इख्तियारी सब्र था। कभी कभी आप और मैं मजबूर हो जाते हैं सब्र करने पे, देर इज़ नो अदर चॉइस, तो क्या हुआ, अल्लाह उसका भी अजर देगा अगर खुशी से कबूल कर लेंगे, लेकिन वो तो मजबूर है, बीमार कर दिए गए, सब्र है। बट आपने अपनी मर्ज़ी से एक ऐसा रास्ता चुना जो आपकी ज़िंदगी को दूसरों से अलग कर रहा है। लोग दोपहर में सो रहे हैं, आप यहाँ आ रहे हैं, ये आपका इख्तियारी फ़ैसला था, मैं आपको मुबारक दे दूँ। आप सब ने इस इल्म के सफ़र को इस वक्त अपने घर से निकल कर आने में ख़ुद चूज़ किया है ना, ये आपका इख्तियारी सब्र है। और वल्ला ही ये सब्र आपको कितनी और तकलीफ़ों से बचाएगा, एक जुमला लिख लें बाद में काम आएगा। जब हम अपने इख्तियार से सब्र कर लेते हैं ना कुछ बातों पे, जैसे कि नेकी के मौके को कबूल करना, तो अल्लाह हमें इस तरारी तौर पे मुश्किलात में नहीं डालता जिसमें फिर मजबूरन सब्र करना पड़े। वो तो है ही, वो तो करना ही है, मजबूर हैं, परेशान हैं, नहीं। आपने अल्लाह से कहा, अल्लाह ताला हम आपके रास्तों पे निकलेंगे, आप हमसे सब्र कराएं। एक तो अक्सर मैं अपने लिए बहुत पसंद करती हूँ कि अल्लाह मुझे बीमार ना करना, मुझे बीमारियों वाले मजबूरी इस्तरारी सब्र में ना डालना, मुझसे नेकियां करा ले, इख्तियारी सब्र करने को तैयार हूँ। सुबह भी करा ले, शाम को भी करा ले, वीकडेज़ में करा ले, वीकेंड पे करा ले, खुशियों में करा ले। और अल्लाह मैं अगर ये जो कर रही हूँ ना, तो इसमें मुझसे ये सब्र मुझसे ले ले, मैं भाग दौड़ करूँ, मैं कुछ भी करूँ, तो इसके बदले में मुझे दुखों परेशानियों से बचा ले। कौन सा फ़ायदे वाला सौदा? याद रखिए एक जुमला लिख ले, जब हम जान के अल्लाह के रस्तों से हटते हैं ना किसी भी मामले में, अल्लाह ऐसी जगह से मारता है सर पे थप्पड़ के, चलो अब भुगतो फिर। आप पैसा बचा लें अल्लाह के रस्ते से, बचाए बड़े खुश हैं, बचा लिया, अक्लमंद हैं। यहाँ से चार बचाएंगे, उधर आठ की फटीक पड़ी होगी, कहीं जाके गाड़ी ठुक जाएगी, कहीं को टूटी लीक कर जाएगी, अल्लाह को हमसे निकालना आता है, याद रखिए। आप वक्त बचाते हैं अल्लाह से, नहीं 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 बहुत मुश्किल है, एक ही बार जाएंगे, एक ही दफ़ा, नहीं 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 ये आ गए, अब कब जाएंगे, अब सुबह क्या, अब शाम क्या। अल्लाह कहते हैं मेहमानों को, जाओ इसके घर में, ये फारिग बैठी रहती है, जाओ खाओ इससे खाने और रोटियाँ और टुकड़े खाओ। खिलाना बहुत स्वभाव है, लेकिन आप क्लास छोड़ दें और मेहमानों को खाने खिलाते रहे, ये सब्र नहीं है। तो ये तो एक बड़ा गहरा खाता है, जिसको कहते हैं ना कि दिल समंदरों डूंगे, कौन दिलां दियां जाने। सब्र भी समंदरों डूंगा है, जिसने सब्र सीख लिया उससे ज़्यादा दुनिया में काबिले रश कोई नहीं है। इतनी हदीसें, 90 से ज़्यादा आयतें कुरान में सब्र से मुतल्लिक, और बताइए। और अगर आप अपनी बच्चियों को सब्र सिखा के घर से भेजें, देखिए हाँ कैसे फिर वो मोटे से भी गुजर जाएंगी तो पतले से भी गुजर जाएंगी, रूखी भी खा लेंगी तो सूखी भी खा लेंगी। जिसको सब्र करना आ गया उसको कौन डरावेगा, सोचिए ना। आप दुख में भी खुश हैं तो और क्या आएगा, देखिए ना, नेमत मिली हुई है, खुश हैं, हाय धड़का है, हाय चली ना जाए चली जाए, खुशी में भी धड़का है, और आप दुख में भी कहते हैं मज़ा ही मज़ा है, बीमार है फिर भी खुश हैं, तो अब उससे ज़्यादा क्या होगा, फौत ही करेगा ना अल्लाह आपको। तो सब्र करना सीखे। दुनिया के वो लोग काबिल रश्क, हदीस है बुखारी की रिवायत है, अल्लाह एक नेमत जो हर एक को नहीं देता, और वो सब्र की नेमत है। जिसको सब्र की नेमत दी गई उसको खैर कसीर दी गई। तो ये सब्र लेकर ज़िंदगी के मैदान में कूदें, फिर सब्र और शुक्र का तकाबुल है, सब्र शुक्र में ढलेगा, शुक्र सब्र में ढलेगा। मुसीबत के वक्त शुक्र करना सीख लीजिए, अल्लाह आपको खुशियों के अंदर सब्र करना सिखा देगा। तो सब्र का मामला बहुत लंबा चौड़ा है, सब्र अपने वक्त पे अच्छा लगता है। इन्नम सब्र इन द सदमत लूला, पहली जब चोट पड़े उस वक्त सब्र, बाद में तो रो धो के सब्र आ ही जाता है। अल्लाह ने आपको नेकियों के काम का मौका दिया, कीजिए सब्र, फिर रोएंगे तो अल्लाह छीन लेगा आपसे नेकियों के मौके, मिलेगा क्या। इंशाल्लाह इसको मैं यहाँ स्टॉप करके हम पहले चलेंगे अब पारे की आयतों के साथ।